आस्तिक के हाथों में उसकी डीएनए रिपोर्ट थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा उसका और अरुणिमा का ही है। न जाने क्यों आस्तिक के मन में बेचैनी होने लगी। वो बाप बनने वाला है, एक छोटा बच्चा उसे पापा कहेगा। उसके मन में हल्के हल्के एहसास जन्म ले रहे थे। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान आ जाती तो कभी बेचैनी घर कर लेती। अरुणिमा इस वक्त अपने कमरे में थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को छुआ और धीरे धीरे उसे सहलाकर अपने बच्चे से बात करते हुए कहने लगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ बेबी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। भले ही वो मॉन्स्टर तुम्हारा पिता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी और मैं अपने बच्चों पर कभी भी उस मॉन्स्टर की परछाई नहीं पड़ने दूंगी। भले ही तुम्हारे रगों में उस राक्षस का खून हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगी। तुम मम्मा के सब कुछ हो बेबी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है कि तुम्हारा पिता एक मॉन्स्टर है, लेकिन इसमें मम्मा का भी तो कोई कसूर नहीं है ना। मम्मा की बात सुन रहे हो ना और उन्हें समझ रहे हो ना? बच्चे, तुम माँ की बात सुन रहे हो ना? मुझे यकीन है तुम मुझ पर ही जाओगे। तुम अपने पिताजी जैसे नहीं बनोगे, ना ही तुम्हारे अंदर उनकी कोई छवि आएगी। तुम मुझ पर जाओगे, तुम बस मेरा अंश बनकर रहोगे। और तुम फिक्र मत करना, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ इस नरक भरी दुनिया को छोड़ दूंगी और उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। तुम अकेले में किससे बात कर रही हो? बालकनी के दरवाजे से पलटकर जब अरुणिमा ने जाह्नवी और पृथ्वी को अपने सामने देखा तो वो मुस्कुराने लगी। वो दोनों अंदर आते हैं और बालकनी में लगे सोफे पर अरुणिमा के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन जाह्नवी अरुणिमा के पास बैठती है। वो एक हाथ से अरुणिमा के कंधे को पकड़ती है और दूसरा हाथ उसके पेट पर रखते हुए कहती है, तो आप बच्चों से बातें कर रही थीं, वो भी अकेले अकेले? गलत बात है भाभी, हमें क्यों नहीं बुलाया? अरुणिमा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है और उसने जाह्नवी से कहा, तुम्हें जो बात करनी है तुम अभी कर लो, क्योंकि कल का क्या भरोसा है। हो सकता है कल को तुम बच्चों से बात भी ना कर सको, क्योंकि तब बच्चे यहाँ पर होंगे ही नहीं। अरुणिमा की बात पर जाह्नवी का चेहरा उदासी से भर गया, लेकिन पृथ्वी कहता है, एक बार फिर से सोच लो अरुणिमा, तुम जो खेल रही हो, अगर भाई को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। जितना मैंने उन्हें जाना है, वो बहुत खतरनाक इंसान है। अरुणिमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मैंने तुम्हारे भाई का वो रूप देखा है पृथ्वी, जो शायद तुमने भी नहीं देखा है। पर थैंक्स पृथ्वी मेरा दोस्त बनने के लिए, और थैंक्स जाह्नवी मेरी बातों को समझने के लिए। अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद मैं ये कदम कभी उठा ही नहीं पाती। एक महीने बाद आस्तिक और अरुणिमा के बीच अभी भी सब कुछ वैसा ही था, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही दुश्मन बने हुए थे। आस्तिक अरुणिमा को चैलेंज करने का एक मौका नहीं छोड़ता था और अरुणिमा आस्तिक के चैलेंज को बर्बाद करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने टक्कर में थे, क्योंकि अब अरुणिमा को सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी आस्तिक से मुकाबला करना था। उसे बस परीक्षा तक का इंतजार करना था। एक बार अगर वो परीक्षा दे देगी, उसके बाद ना तो उसके लिए आस्तिक मायने रखेगा और ना ही उसकी ये बनावटी दुनिया। अरुणिमा अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। वो अपने बच्चों की परवरिश एक अच्छे इंसान के रूप में करेगी। उसे कभी नहीं बताएगी कि उसका बाप असल में कैसा इंसान था। और इन सब में पृथ्वी और जाह्नवी भी उसकी मदद कर रहे थे। आस्तिक पूरी कोशिश कर रहा था ये पता करने की कि आखिर अरुणिमा ने मिश्री और शारदा देवी को कहाँ छुपा रखा था। लेकिन अरुणिमा ने सच ही कहा था, आस्तिक कभी ये नहीं पता लगा पाएगा। और पिछले एक महीने से आस्तिक का मॉन्स्टर भी उस पर हावी होता जा रहा था, क्योंकि सच में वो इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि वो दोनों इस पूरी दुनिया में कहाँ छुपे हुए हैं। 10 दिन बाद अरुणिमा के एग्जाम शुरू होने वाले थे और वो अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसका घर से बाहर निकलना बंद था। ये तो अब अरुणिमा ही जाने कि आस्तिक की पाबंदी के बावजूद वो कैसे अपने इम्तिहान के लिए जाती है। वैसे ये इम्तिहान सिर्फ उसके पढ़ाई का ही नहीं था बल्कि उसकी लाइफ का भी था। सुबह का वक्त, महल। सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अरुणिमा उन सब के साथ ही बैठी हुई थी। एक नौकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था, लेकिन कीर्ति पिछले 2 दिनों से घर नहीं आई थी। वो अपनी एक फ्रेंड के घर पर थी और पिछले कुछ समय से कीर्ति का व्यवहार भी सबके लिए रूखा रूखा सा हो रहा था। वो किसी से ठीक से बात नहीं कर रही थी और ना ही किसी के साथ ठीक से मिल रही थी। आस्तिक चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो किसी से क्या ही बात करेगा, क्योंकि उसे पता है कोई उसकी बात का जवाब नहीं देगा। अगर वो किसी से कोई सामान मांगेगा तो उस सामान को देने के लिए भी सर्वेंट ही आगे आएंगे। सब लोग अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। आस्तिक ऑफिस जाने वाला था और पृथ्वी अपने हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे से कीर्ति की आवाज़ आती है, भाई। कीर्ति की आवाज़ पर आस्तिक और पृथ्वी दोनों एक साथ पलट कर देखते हैं। यहाँ तक कि अरुणिमा, जो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, वो भी पलट कर दरवाजे की तरफ देखने लगती है और किचन की तरफ बढ़ते हुए जानवी के कदम भी रुक गए थे। उन सबकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि दरवाजे पर कीर्ति और रजत खड़ी थी और दोनों के गले में वरमाला थी। उन दोनों को देखकर आस्तिक का गुस्सा एकदम से बढ़ गया। वो तेज कदमों से दरवाजे के पास आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, ये क्या है कीर्ति? कीर्ति के इस तरीके से चिल्लाने पर कीर्ति एकदम से डर जाती है, लेकिन रजत कीर्ति का हाथ कसके पकड़ लेता है और आस्तिक को देखकर कहता है, राजा साहब, हमने शादी कर ली है। इस बात पर तो पृथ्वी भी आगे आता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कीर्ति ने बहुत हिम्मत से रजत का हाथ थामते हुए कहा, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं भाई, हम दोनों ने सच में शादी कर ली है और अब हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हमें बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए।